के समय महाराज भरत री वो जंगल मेरे आए। आ जंगल में देखे भरत री साधु तपते पाए। साधु तपते पाए गुरु गोरख और ओगड़ चेला जमात थी बड़ भारी। भंग घोट के चिलम उड़ारे सुलपा की तैयारी। चिलम पी रहे सुलपा की तैयारी। ओगड़ चेला कहे सुनो गुरु धूनी खाली कैसे। बोला गोरख सुन रे ओगड़ राज भरत री करे। बोला गुरु जी सुन रे राज भरत री करिए। थोड़ी देर में भूख भरत री घूमत घूमत आए। आ जंगल में भूख भरत री ने चरणन शीस नवाए। बोले गोरख सुनो भरत री क्यों जंगल मेरे आए। भक्ति तेरी पूर्ण हो गई अमर होर की काया।
जी महाराज की जय। तो एक समय के ऊपर में बाबा गोरक्षनाथ जी अपने 984 सिद्धों को लेकर के और जंगल में विराजमान थे। तो इतने में क्या होता है कि महाराज भर्तृहरि उज्जैन नगरी के राजा ये भी अपने घोड़े पर सवार होकर के और ये भी उसी जंगल में आ पहुंचे। तो इधर से चेला ओगड़ कहने लगा हे गुरु महाराज ये एक धुनी खाली किसकी है। गुरु महाराज कहने लगे हे बेटा ओगड़ ये जो गद्दी है इसका महंत अभी राज कर रहा है। वो कुछ दिन के बाद में यहाँ आकर के इस धुनी के ऊपर में तपेगा। इस समय के ऊपर में वो रानी पिंगला के मोह के जाल में फंस करके और इतना बेवकूफ हो रहा है कि भगवान को और गुरु के नाम को सबको भूल रहा है। इतनी ही देर के बाद में राजा भर्तृहरि भी उसी जंगल में आ पहुंचे और अपने गुरु महाराज के चरणों में दंडवत की। तो गुरु महाराज खुश होकर के और उन्होंने क्या किया
जाय गुफा में गुरु गोरख जी एक अमर फल लाए। जाय गुफा में गुरु गोरख जी एक अमर फल लाए। बड़े प्रेम के साथ गुरु ने राजा को गिताए। राजा को गिताए बड़े प्रेम से
अमर फल राजा को गिताए।
ये ले राजा देऊं अमर फल। ये ले राजा देऊं अमर फल अमर होए की काया। ये तो मैं अर करके भक्ति कैलासन से लाया। आसन से लाया जो इसको तू खा लेगा तेरी अमर होएगी काया। ऐसी वस्तु तुझको दीने सुन ले ध्यान लगाया।
सुन ले ध्यान लगाया
तू
तो
सुन ले ध्यान लगाया। तेरे को से हुआ था भारी, दिल के अंदर सोचे भरत रे खाए पिंगला प्यारे। पतिव्रता नारी कह भरत रे दिल के अंदर खुशी होए रा भारी,
खुशी होए वा भारी, खुशी होए वा भारी,
दिल के अंदर सोचे भरत रे खुशी होए रा भारी। लेके अमर फल अपने हाथ में रंग महलन में आया, लेके अमर फल अपने हाथ में रंग महलन में आया, आके अपनी नारी को वन ऐसे वचन सुनाया, वचन सुनाया। इसको खाओ प्यारी पिंगला अमर होएगी काया, इसको खाओ प्यारी पिंगला अमर होएगी काया, कजली बन में जाए पिंगला गुरु गोरख से लाया। सोच रही है वो पतिव्रता नारी, अश्वे पालकों फल खिलाऊं के दिल में तैयारी,
राजा भर्तृहरि ने अपने मन में विचार किया कि इस अमर फल को मैं खा करके क्या करूंगा, जो मेरी प्यारी पिंगला है उसके लिए मैं खिलाऊंगा, क्यों कि वो उत्तम पतिव्रता नारी है। तो राजा भर्तृहरि अपने दिल के अंदर में सोच समझ करके और अपने उज्जैन नगरी में आया और कहने लगा, हे प्यारी पिंगला, आज तो मैं एक इतनी बढ़िया वस्तु लेकर के आया हूँ और ऐसे महापुरुष से मैंने उसको प्राप्त की है कि अगर जो आप इसको खा लेंगी तो आपकी संसार में अमर काया हो जाएगी। रानी पिंगला कहने लगी, हे महाराज, ऐसा अमर फल आप कहां से लाए हैं? हे प्यारी पिंगला, मुझे ये गुरु गोरख से प्राप्त हुआ है। महाराज, बहुत अच्छा। अब रानी पिंगला सोचने लगी, हे भगवान, इस अमर फल को मैं खा करके संसार में क्या करूंगी, जो मेरा मित्र है अपने घोड़े का चराने वाला अश्वपाल जी, इस अमर फल को मैं उनको खिलाऊंगी। रानी पिंगला कहने लगी, हे महाराज, इस अमर फल को मुझे दीजिए, तुम और हम दोनों प्राणी इसको साथ साथ में बैठ के प्रेम के साथ में खाएंगे। रानी पिंगला, इस वक्त मैं दरबार जा रहा हूँ और शाम का वक्त होगा जब तुम और हम दोनों इस अमर फल को खाएंगे। तो रानी पिंगला ने खुश होकर के और बड़े प्रेम के साथ में अमर फल को रख दिया।
राजा भरत रे तुरत वहां से दरबारन में आए, बैठ अपने दरबारन में धर्म कन्या वे चुकाए,
धर्म कन्या ये चुकाए, उन्होंने धर्म कन्या ये चुकाए।
राजा भरत रे बैठ वहां पे धर्म कन्या वे चुकाए, करके बीच कचेड़ी सोच किया था भारी, इस रंग महलन में रानी पिंगला की नौकर की तैयारी,
नौकर की तैयारी, उसने की नौकर की तैयारी।
रानी तन में की नौकर की प्यारे अपने पास बुला पांदी को कही के फियत सारे अपने पास में बुला पांदी को कही के फियत सारे अभी चली जा तू बस्ती में बुला के नौकर लारे बस्ती में असवे पाल को ऐसे अर्ज सुनाए
ऐसे अर्ज सुनाई उसने
ऐसे अर्ज सुनाए आ बस्ती में असवे पाल को ऐसे अर्ज सुनाए चलिए तुम तो असवे पाल जी रानी रही है बुलाए चलिए तुम तो अश्वपाल जी रानी रही है बुलाए ऐसी वस्तु दे आपको आज तलक ना खाए
आज तलक ना खाई तुमने आज तलक ना खाई
ऐसी वस्तु दे आपको आज तलक ना खाई
भर्तृ जी महाराज की जय। तो अब रानी पिंगला कहने लगी हे बांदी इस समय के ऊपर में महाराज भर्तृ तो दरबार को गए हुए हैं और आप मेरे कहने से बस्ती में जाओ और अश्वपाल जी को बुला करके लाओ। तो बांदी तुरंत यहाँ से दिहाई सीधी बाजारन में आई और आकर के अश्वपाल जी से कहने लगी अश्वपाल जी आज आपको रानी पिंगला बुला रही है ने मालूम उनके पास में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको खिलाना चाहती है। तो अश्वपाल बड़ा खुश हुआ खुश होकर के और दरबार में आकर के रानी पिंगला से किस प्रकार से बात करते हैं
कैसे बुलायो मोए रानी कैसे बुलायो मोए मुझको सच बता दे बात पिंगला कैसे बुलायो मोए सच बता दे बात पिंगला कैसे बुलायो कैसे बुलायो मोए पिंगला कैसे बुलायो मोए मुझको सच बता दे बात पिंगला कैसे बुलायो मोए मैं तो अपने वे घोड़े के पास रहा था सो
अपने घोड़े के पास रहा था
बांदी ने मुझसे जाके कही थी बांदी ने मुझसे जाके कही थी रानी बुला रही है तो बांदी सत बता दे बात पिंगला कैसे बुलायो मोए बांदी सत बता दे बात पिंगला कैसे बुलायो
आइए अश्वपाल जी जिस कारण मैंने आपको बुलाए हैं वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ परंतु अश्वपाल जी इस बात के लिए आप किसी से नहीं कहेंगे नहीं रानी पिंगला मैंने आज तक आपकी कोई शिकायत नहीं की है आप कहिए क्या बात है। अश्वपाल जी देखिए ये कौन सा फल है। अश्वपाल उस फल को देख करके कहने लगे हे प्यारी पिंगला मेरी तो समझ से बाहर है ये कौन सी वस्तु है। रानी पिंगला कहने लगे अश्वपाल जी यह है अमर फल कि मैं इसका क्या करूं कि इस अमर फल को आप खा लीजिए ताकि आप अमर हो जाएंगे तो संसार में तुम्हारा और मेरा प्रेम बना रहेगा। नौकर ने सोचा हे भगवान जब ये नारी खुद अपने पति की सगी नहीं हुई तो तुम्हारी सगी कहां से होगी। लेकिन अपने दिल के अंदर में सोच के कहने लगा लाइए रानी ये आपने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबानी की है। तो नौकर का प्रेम एक वेश्या से था। नौकर ने सोचा हे भगवान मैं इस अमर फल को खाकर के संसार में क्या करूंगा इस अमर फल के लिए मैं अपनी प्यारी वेश्या के वास्ते खिलाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा। तो नौकर उस अमर फल को प्राप्त करके और यहाँ से अपने वापस घर पे आकर के और उस वेश्या के दरबार में पहुँचते हैं।
पाल जी अपने घर पर आए लेके फल को अमर पाल जी अपने घर पर आए बड़े प्रेम के साथ वाने ना धो करके जाए आके पहुँचे बीच सराय में वैसा के घर आए आवे सासे बड़े प्रेम से मन की बात बताए बड़े प्रेम के साथ बैठ कर मन की बात बताए का अर्ज हमारी हम एक अमर फल लाए सुन ले गन का बात हमारी हम एक अमर फल लाए भक्ति की नी जा जंगल में शिव शंकर से पाए आसन में शिव शंकर से पाए इस फल को तू खा ले नारी अमर होएगी काया इस फल को तू खा ले नारी अमर होएगी काया बहुत दिनों से भक्ति करके ये मुश्किल से पाया
जी महाराज की जय। तो अब नौकर वहां से अमर फल को प्राप्त करके और अपने घर पे नहा धो करके और सराय में पहुंचा और जाके गणिका से कहने लगे हे गणिका आज तो मैं तुम्हारे कारण 12 साल तक मैंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके और फिर मैं यह वस्तु मुझे प्राप्त हुई थी। हे अश्वपाल जी इस वस्तु से क्या होगा कि आपके संसार में अमर काया हो जाएगी। कि महाराज आप कि हमारी तो कोई खास बात नहीं है मगर तुम्हारी संसार में अमर काया हो जानी चाहिए। वैश्या मन में सोचने लगी हे भगवान मैं महापापनी महादुष्टनी नारी हूं मैं इस अमर फल को खाने से अमर होंगी इसलिए संसार में ऐसा उज्जैन नगरी जैसा राजा महाराज भर्तृहरि चक्रवर्ती राजा ऐसे संसार में राजा हुए न होने के ऐसी वस्तु अगर जो हमारे महाराज खाएं और उनकी अमर काया हो जाए तो आज संसार में एक न्यायकारी ऐसे राजा पैदा हुए होने के हैं। तो वैश्या अपने दिल के अंदर में विचार करके और अश्वपाल जी से किस प्रकार से कहती हैं
लगा कर सफल जिंदगी मेरी हो गई ऐसा मित्र बना कर
ऐसा मित्र बना कर
सफल जिंदगी मेरी हो गई ऐसा मित्र बना कर घोर तपस्या तुमने की नी अमर फल खाऊं मुझको दीजे बड़े प्रेम से बहुत प्यार से खाऊं
बड़े प्यार से खाऊं मैं तो
बहुत प्यार से खाऊं मुझको दीजे आप अमर फल बड़े प्रेम से खाऊं हा हाथ में लेकर वो गन काने खुशी मनाए भारी अश्वपाल को खुश कर देना कि चलने की तैयारी अश्वपाल को खुश कर देना कि चलने की तैयारी कोई घड़ी में अश्वपाल जी अपने घर पर आया कनका ने श्रृंगार किया हर दरबारन दिल छाया
पाल जी को तो उधर भेज दिए और अब उस गनका ने 16 सिंगार 32 आभूषण करके और सीधी महाराज भर्तरी के दरबार में जाकर के और उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी ही दरबार आप जैसे सच्चे राजा संसार में पैदा हुए न होने के ऐसे धर्मश्री राजा जो आपको चक्रवर्ती पद प्राप्त है ही महाराज मैं आपकी सेवा में एक नजर भेंट करना चाहती हूँ। महाराज भर्तरी कहने लगे हे गनिका पहली बात है कि मेरे दरबार में तेरा आने का ही क्या काम था और जो आप आई हैं तो आप एक भिखार नहीं मैं तुम्हारा भेंट के वास्ते स्वीकार नहीं कर सकता। हे दरबार वो आप ही के योग है इसलिए मैं उसको लेकर के आई हूँ। गनिका ऐसी क्या बात है आपके पास में ऐसा कौन सी वस्तु है जो आप नजर भेंट करना चाहती हैं पहले मेरे वास्ते दिखाइए। तो अब गनिका हाथ में लेकर के और उस अमरफल को राजा भर्तृहरि को दिखाती है।
अपने हाथ में लिया अमर फल अपने हाथ में लिया अमर फल दिल में नहीं समाया इसको खा ले भूख भरत रे अमर होएगी काया
अमर होएगी काया तेरी अमर होएगी काया
इसको खा ले भूख भरत रे अमर होएगी देखा नजर पसार भूप ने
देखा नजर पसार भूप ने
दिल उनका थर्राया ऐसा अमर फल रंग मेलन में वैसा खन कैसे आया
वैसा खन कैसे आया अमर फल वैसा खन कैसे आया
ऐसा अमर फल रंग मेलन में इसके पास कैसे आया तुरंत वो तो उठा भरत रे लिया अमर फल भाई अंदर देखन लागा कैसे करूं सफाई।
तो गनिका ने फौरन अमर फल निकाल करके और राजा भर्तृहरि की नजर भेंट की। राजा भर्तृहरि सोचने लगा हे भगवान ये तो ऐसा अमर फल मालूम होता है कि जैसा मैं गुरु गोरक्षनाथ जी से मुझे प्राप्त हुआ था और आज इस गनिका के पास में ऐसा अमर फल कहां से आया। हे गनिका ऐसी वस्तु अमोलक तुम्हारे पास में कहां से आई है। हे दरबार मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती एक मेरे मित्र हैं उन्होंने कितने ही युगों तक भगवान शंकर की सेवा की थी उन्होंने लाकर के अमर फल मेरे वास्ते दिया है। हे गनका ऐसे तुम्हारे मित्र कौन है मेरे से सच्ची बात कहो मेरे दरबार में झूठ बोलने का काम नहीं है क्योंकि मैंने हमेशा सत्य का व्यवहार और सत्य का राज किया है। तो राजा भर्तृहरि के दरबार में कोई भी प्राणी झूठे शब्द उच्चारण नहीं करते थे।
Thank you. सुनिए भूप भरत रे अस्वे पाल जी ध्याये बहुत दिना से मेरी उनकी प्रीत बहुत ठहराए भरत रे इसमें राज घनेरा दिल के अंदर सोचे भरत रे इसमें राज घनेरा तुरत दिया हलकार भेज कर अस्वे पाल को लावो हाथ जोड़ कर चल दिया नौकर रंग मेलन में जाओ
रंग मेलन में जाओ रे नौकर रंग मेलन में जाओ
हाथ जोड़ कर चल दिया नौकर रंग मेलन में जाओ वहां से चल दिया तुरते ही नौकर रंग मेलन में आया के देखा घोड़ा पास में नौकर भी वहां पाया
नौकर भी वहां पाया वो तो
नौकर भी वहां पाया आके देखा अपने पास में नौकर भी वहां पाया
राजा भर्तृहरि कहने लगा कि नौकर जल्दी से जाओ और जो हमारे अश्वपाल नौकर है उनको बुला करके लाओ नौकर तुरंत ही वहां से चले और दरबार में आकर के देखते हैं तो अश्वपाल जी अपने घोड़ा के पास में बैठे हुए हैं नौकर ने आके कहा अश्वपाल जी आज तो आपको दरबार साहब याद कर रहे हैं तो अश्वपाल ने सोचा आज कारण क्या है चलो चलना जरूरी है तो अब अश्वपाल जी वहां से उठ करके और महाराज दरबार भर्तृहरि जी का दरबार जो लगा हुआ था उसमें आकर के और दूर से ही प्रणाम करके दंडवत करके और पास में बैठ गए कहिए महाराज क्या सेवा है हे अश्वपाल जी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जो वस्तु आपने गणिका को दी है वो आपने कहां से प्राप्त की है अश्वपाल कहने लगा महाराज वो वस्तु तो मैंने बहुत मुश्किल से प्राप्त की है
इस फल के लिए कैलासन में की ना तप मैंने भारी इस फल के लिए कैलासन में की ना तप बड़ा भारी वहां से मुझको मिला अमर फल शंकर जटाधारी
शंकर जटाधारी वे तो
शंकर जटाधारी खुश हो करके दिया अमर फल शंकर जटाधारी
गोरक्षनाथ जी महाराज की
जय
बोल भर्तृहरि जी महाराज की जय
बता दे करी तपस्या भारी ये तो मुझको बात बता दे करी तपस्या
भारी
मुझको फुर्सत कभी मिली थी भक्ति करने न्यारी
भक्ति करने न्यारी
प्रभु, ये फल मैंने भगवान भोलेनाथ के कैलाश से प्राप्त किया था। मैंने 12 साल तक उनकी तपस्या की थी। अरे अश्वपाल, मेरे दरबार में कोई झूठ नहीं बोल सकता, और तुमने आकर के मेरे दरबार में झूठे वचन उच्चारण किए हैं। ये बतला दे नौकर, बचपन से तू मेरी नौकरी कर रहा है, तुझे 12 साल तप करने का कब मौका मिला है? सच बता, ये अमर फल तुमने कहां से प्राप्त किया है? हे महाराज, अगर मेरे अपराध क्षमा हो तो मैं आपसे सच्चा भेद खोल दूं। हे अश्वपाल जी, आप मेरे दरबार में झूठ मत बोलिए। हे दरबार साहब, ये फल मुझे रानी पिंगला से प्राप्त हुआ है। ओहो, इतनी आवाज को सुन करके राजा भर्तृहरि उसी वक्त दरबार में पछाड़ खा के गिर गया। हे भगवान, मेरी रानी पिंगला से इसको अमर फल कैसे प्राप्त हुआ है? मैं उस पिंगला के प्यार में इतना बेवकूफ हो रहा हूं कि जो मैंने खुद अपने मां का जाया भाई वीर विक्रमाजीत, उनको मैंने वनवास दे दिया, और इस चांद डालने के चक्कर में आकर के मैंने अपने परिवार का नाश कर लिया। अब तो इस अमर फल का पता लगाना चाहिए। जाइए अश्वपाल जी, तुम तुम्हारा काम करिए। अमर फल को प्राप्त करके और दरबार सीधे अपने महलों में आकर के रानी पिंगला से कहने लगे। जो मैं अमर फल लाकर के आपको दिया था, वो अमर फल कहाँ है? हे प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी और उत्तम पतिव्रता नारी, मैं आपसे मिथ्या वचन नहीं उच्चारण करूंगी। हे स्वामी, मेरे पास में आपका दी हुई वस्तु रखी है। हे प्यारी पिंगला, लाओ, तुम और हम दोनों उस अमर फल के वास्ते खाएंगे। हे प्राणनाथ, अभी लाती हूँ। तो रानी पिंगला इधर उधर को घूमने लगी, अब वो अमर फल है भी कहाँ? हे प्राणनाथ, अमर फल मैंने तो यहाँ रखा था, नहीं मालूम यहाँ से कहाँ गायब हो गया है। रानी पिंगला, संसार में पतिव्रता नारी कभी मिथ्या वचन नहीं उच्चारण करती हैं, और आप सरासर झूठ बोलती हैं। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने यहाँ रखा था, नहीं मालूम अमर फल कहाँ गया। प्यारी पिंगला, आप मेरी कसम खाइए। हे पतिदेव, मैं आपके चरणों की कसम खा के कहती हूँ, मैंने वो अमर फल किसी को नहीं दिया, और वो अमर फल यहाँ रखा हुआ था। हे प्यारी पिंगला, ये बात मेरी समझ से बाहर है। इतनी बात को देख करके और राजा भर्तृहरि को बड़ा भारी गुस्सा आया, और गुस्से में आकर के राजा भर्तृहरि कहने लगे।
तैने ज्ञान दिया है पिंगला, तैने ज्ञान दिया है पिंगला है पतिव्रता नारी, दिल में लेना सोच पिंगला सती न होती नारी, सगी न होती नारी रे, अब सगी न होती नारी, दिल में लेना सोच पिंगला सगी न होती नारी, तेरे ऊपर सुन रे पिंगला बनोवास दे ना, भाई विक्रम जैसा पिंगला और कोई ना होना,
और कहीं ना होना पिंगला और कभी ना होना,
भाई विक्रम जैसा पिंगला और कोई ना होना, तुरंत भूप ने वस्त्र उतारे सिर का लाज रख दीना। तुरत भूप ने वस्त्र उतारे सर का ताज रख दीना।
आप मेरी कसम खा चुके, ये अमर फल मेरे पास कहाँ से आया? आप सच्ची बात सुनाइए। हे प्राणनाथ, ये तो उदासी से घोर पाप हो चुका है। मैंने इस अमर फल को अश्वपाल जी को दे दिया है। हे रानी पिंगला, मैं संसार में तुमको एक पतिव्रता नारी समझता था। किसी ने सत कहा है कि स्त्री की कोम किसी की सगी नहीं होती है। हे तुष्णी, हे चांडालनी, तेरे प्रेम में आकर के और मैंने मेरी माँ के जय भाई वीर विक्रमाजीत उनको वनवास भेज दिए। हे दुष्टनी, अब मैं तेरे रंग महलों में रहना नहीं चाहता और अब मैं जंगल बियाबान में जाकर के और गुरु गोरक्षनाथ जी का मैं चेला बनूंगा और संसार में मैं अमर रहूंगा। तो इतनी सुनते ही अब रानी पिंगला कहने लगी। अब मैं तुम्हारे महलों में नहीं रहूंगा और मैं योगी बन करके और यहाँ से जा रहा हूँ। रानी पिंगला कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मुझे अकेले छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? महाराज ये तरुण अवस्था, इसके बीच में आप मेरे साथ धोखा दे करके और कहाँ चले जा रहे हैं? अगर जो आपको ऐसा ही करना था तो मेरे प्राणपति, आपको मेरे साथ में शादी नहीं करनी थी। हे प्यारी पिंगला, इसमें मेरा क्या दोष है? आज तक मैंने तुमसे प्यारी पिंगला कहा और आज के बाद में मैं तुमसे माता का रिश्ता कहूंगा। हे प्राणनाथ, आप ऐसी आवाज मेरे कानों में नहीं गुजारिए। महाराज, मैं आपकी एक धर्म पत्नी से आप माता का रिश्ता नहीं कहिए। नहीं रानी पिंगला, तुमने मुझे उपदेश दिया है और मैं तुम्हारी मोहब्बत में पढ़ करके इतना बेवकूफ हो रहा था कि मैं मेरे जो सतगुरु है उनके वास्ते भूला हुआ था। तूने मेरे वास्ते ये भूली हुई बातें याद दिलाई है। रानी पिंगला, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। हे महाराज, मैं किसके ऊपर में विश्वास करूंगी? मेरे स्वामी भगवान ने मेरी गोदी में एक संतान तक नहीं दिया है। हे प्यारी पिंगला, इसमें बात क्या है? जो तुम्हारी छोटी बहन है उनके पास में 5 पुत्र हैं आप एक पुत्र उनमें से उधारा लेकर के और अपनी गुजरान करना। तो रानी पिंगला कहने लगी,
सुन मेरा राजा जी, मांगा मिल जाए दुनिया में जो जाना मारा
राजा, मांगा
मिल जाए दुनिया में जो जाना भरत रे बेटा मिलने का उदारा
की
जय।
हे प्राणनाथ, आप साधु बन करके जा रहे हैं तो प्रभु मांगे हुए पुत्र से हरगिज काम नहीं चल सकता। महाराज संसार में कहते हैं कि काता जिसका सूत और जाया जिसका पूत। हे महाराज, जो मेरी छोटी बहन के पुत्र हैं वो मेरे वास्ते कभी भी नाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्राणनाथ, तुम जोगी और मैं तुम्हारी जोगन बन के चलती हूँ और जंगल में चल करके दोनों ही अपन भक्ति करेंगे। हे रानी पिंगला, तुम भक्ति के योग नहीं हो, तुम भक्ति नहीं कर सकती हो। हे पतिदेव, चांद के बिना, चंद्रमा के बिना संसार में चांदनी नहीं होती और तारा के बगैर रैन शोभायमान नहीं देती। हे मेरे प्राणनाथ, आपके बगैर मैं संसार में मैं शोभायमान नहीं देऊंगी। इसलिए महाराज, मुझको आप अपने साथ साथ ही लेते चलिए। रानी पिंगला, जो छत्री होते हैं वो कभी अपनी नारी को साथ में लेकर के नहीं घुमा करते हैं, और जो दिल के स्वार्थी होते हैं, जो योगी नहीं कहलाते स्वाधु जिनको कहते हैं, वो नारी के सहित रहते हैं। रानी पिंगला, अब संसार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं तो अपने सतगुरु की शरणों के अंदर में जा रहा हूं।
सुन मारा राजा जी, सुन ओ भरत रे बेने, मत ना दुनिया में बेटा की माँ मारो मारा राजा, मत ना बेटा की रे दुनिया में माँ मारो राजा, मत ना नारी को भरे तारे समझे न हो राजा भरतार। सुन मारा राजा, बालक तो छोड़े दे मारी रानी, मारो
रानी से राजा जा दिने योर पिंगला तू तो मेलन मेरे मोजा माने समझे न हो रानी पिंगे सुने ओ राजा धूप पड़े अरे बन जाऊं बादे
जी महाराज की जय। हे प्यारी पिंगला तुम तुम्हारे महलों में राजपाल संभालिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अब मेरा संसार से और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता सिर्फ मेरा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज से रहा है। तो राजा भर्तृहरि अपने महलों को त्याग करके जाने लगा। उस वक्त के ऊपर में रानी पिंगला कहने लगी, हे महाराज मैं आपको एक अर्ज और सुनाना चाहती हूँ।
राजा जोगी बन मत जाए पिया मारा साधु बन मत जाए रानी तो पिंगला अर्ज करे मांजल रात तेरा लीना मांजल रात रानी तो पिंगला अर्ज करे साधु बन मत जाए राजा जोगी बन मत जाए रानी तो पिंगला राजपणा के लगो स्त्री राजपणा पना की माए पिंगला जोग पना किर माए रानी तो सिया साधुर बने मत जाए राजा
जोगी बने मत जाए रानी तो
हे प्राणनाथ आप साधु बनकर के नहीं जाइए और मेरे अपराधों के वास्ते आप क्षमा करिए। रानी पिंगला अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। तो राजा भर्तृहरि अपने राजपाट दरबार को त्याग करके और वहां जंगल के बीच में जाके गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। हे नाथ ये संसार में क्या माया है। हे राजा भर्तृहरि तुम पागल हो, ये जो रानी पिंगला तुम्हारी है ये संसार में एक चार औरत हैं जैसे भगवान भोलेनाथ की पार्वती, विष्णु भगवान की लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के ब्रह्माणी और राजा पिंगला तेरे राजा भर्तृहरि रानी पिंगला ये भी एक उत्तम पतिव्रता नारी है। ये सारे खेल मैंने तेरा राजपाट छुटाने के कारण ये खाली मैंने किया था। जो तेरी प्यारी पिंगला है उसको तो मैंने तेरे रंग महलों से गायब कर दी थी और एक इंद्र के अप्सरा को मैंने माया रूपी पिंगला बना करके और तेरे महलों में रखी थी। और जो अश्वपाल है वो भी नौकर तेरा सच्चा है, वो भी मैंने मेरे चरपट शेला को यहां से भेजा था। राजा भर्तृहरि ये मैं तुझे फिर भी समझाता हूँ कि रानी पिंगला को बदनाम मत करे, रानी पिंगला तो वही एक उत्तम पतिव्रता नारी है। हे गुरु महाराज चाहे कुछ भी उत्तम पतिव्रता नारी हो या न हो मैं तो अब संसार सागर से मोह तोड़ चुका हूँ। महाराज मेरे कान फाड़ दीजिए और आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो अब गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज अपने महाराज भर्तृहरि के किस प्रकार से कान फाड़ रहे हैं और इनसे कहते हैं
छुरियन कर राजा घावे है वो पे
भर्तरी, देख मेरे पास में 56 छुरी हैं, और तैने सुना है कि जोगारम बांका खांडे की धार सुही का नाका। योगी बनने के बाद में संसार सागर में नहीं आ सकता, और सुही बनने के बाद में कोई शस्त्र नहीं बन सकता। इसलिए राजा भर्तरी संसार में कहते हैं कि जुक्का और जोगी और लोह का और सुही, ये 56 छुरियों से तेरे कान फाड़े जाएंगे और संसार सागर से फिर तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। महाराज, मुझको भी एक संसार सागर को छोड़ करके और आपकी शरणों में ही आना है, इसलिए महाराज मेरे आप कान फाड़ दीजिए। तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने, तीन प्रकार की छुरी होती है, चेसरी, भूसरी और खेसरी, अपनी हाथ में छुरी लेकर के और राजा भर्तरी के कानों के अंदर में चीरा चढ़ाया, तो एक कान के अंदर में दूध की धार प्रकट हुई, दूसरे कान के अंदर में सुर्खी आई। राजा भर्तरी, अब तुम ऐसा करिए, ये खप्पर हाथ में ले लीजिए और रानी पिंगला के महलों में जाकर के और रानी पिंगला से भिक्षा लेकर के और आप यहां से सीधे जंगल में चले जाइए, उसके बाद में मैं आपकी 360 परीक्षा कर लूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हारी अमर काया करूंगा।
फल हो जा मुझको दे दे भीख पिंगला जोग सफल हो जाए राज पढ़ा के मारी रही स्त्री जोगे पढ़ा की भोली माए रानी तो था से हराज करे पिया ने
पिंगला, आप भिक्षा दीजिए। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं, एक रानी को आप माता कहते हैं? हाँ रानी पिंगला, संसार में जब तक मैं रहा जहां तक तुम मेरी नारी थी, और अब तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारे हाथ से मैं भीख लेने के लिए आया हूँ। तो रानी पिंगला ने मन में सोचा कि अगर जो तू भीख नहीं देगी तो राजा भर्तरी का योग पूरा नहीं होगा। तो रानी पिंगला ने सोच समझ करके और महाराज भर्तरी के खप्पर में भीख डाली। राजा भर्तरी कहने लगे, जय हो माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से और तुम्हारे उपदेश से मैं इस पापी संसार को छोड़ रहा हूँ और मैं मेरे गुरु गोरक्षनाथ जी के शरणों में जा रहा हूँ। तो राजा भर्तरी जी महाराज रानी पिंगला से आज्ञा मांग करके और अपने गुरु महाराज की शरणों में जाते हैं और ये बियाबान जंगल में जाकर के घोर तपस्या कर रहे हैं और ये अपने संतों के पास में आकर के बातचीत कर रहे हैं।
Thank you.
सासरिया सतगुर बेगा आजो जी सासरिया की बात प्रेम से कहता जाजो जी
तुम्हारा सतगुर बेगा आजो जी सासरिया की बात प्रेम से कहता
सतगुरु आया पामना जी कहीं करा मनुहारे
सतगुरु आया पामना जी कहीं करा मनुहार
सिर गऊ को घिरत मंगावा लावा खीर बनाए मारा
सतगुरु बेगा आजर मारा
सतगुरु बेगा आजो जी सासरिया की बात प्रेम से
भर्थरी अपने रानी पिंगला से उपदेश प्राप्त करके और अपने संतों में बैठ करके और गुरु महाराज के सत्संग करने लगे और इस पापी संसार को छोड़ करके और अब प्रभु का भजन करने लगे। हाँ प्रिय सज्जनों, ये कथा राजा भर्थरी और रानी पिंगला की जो कथा थी ये इस जगह पे समाप्त है और बड़े प्रेम के साथ में गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की और राजा भर्थरी की जय बोलने की कृपा करें। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बोल राजा भर्थरी की जय।